अब इसमें बीच में किबले की तब्दीली की कुछ बातें आएंगी जो एक जिमनी बातें हैं, लेकिन आइए इसको पढ़ते हैं। وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ سوچیے اگر آج کے دور میں اللہ کے نبی ہوتے اور شہر کی کسی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوتے اور نماز کے دوران قبلہ بدل جاتا تو امیجن کر سکتے ہیں اس مسجد کا حال کیا ہوتا۔ فتوی بازی اور کفر اور نفاق اور نہ جانے پولیس کوئی بلا لیتے۔ آج ہم ظاہری چیزوں میں اتنا پڑ گئے کہ ہم نے مسجدوں کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا، جو اللہ کے گھر تھے ان کو ذاتی ملکیت سمجھ لیا۔ صحابہ کا دل دیکھیے، وہ رسول کی بات ایسے مانتے تھے جیسے کوئی اپنے دل کی بات مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ دعا کیجئے رسول کی تباہ ہمارے لیے بھی کوئی سخت معاملہ نہ ثابت ہو۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ کون سا ایمان؟ یہاں دیکھیں لفظ ایمان نماز کے لیے بولا گیا۔ صحابہ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوا کہ وہ لوگ جو ان 16-17 مہینوں کے دوران دنیا سے چلے گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو بیت المقدس کی طرف پڑھتے گئے۔ تو کہا ڈونٹ وری، اللہ ان کو اسی کا اجر دے گا، کیونکہ جس طرف اللہ منہ کرنے کا حکم دے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، بات صرف اتنی ہے۔ اور حقیقت کہہ کے یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے۔ یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کس دور کی بات ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے اور خواہش یہ رکھتے تھے کہ قبلہ بدل جائیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف ہے، اور یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ نبی بھی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں، یہ جو لفظ ہے نا یہ ہے قبلے کی تبدیلی کے اصل حکم کے لفظ۔ اگر آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر لیں، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام آیت 144 کے بالکل مڈل میں آ رہا ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ یہ حکم تھا، پیچھے تو صرف پہلے سے بتا دیا گیا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اب جہاں کہیں بھی تم ہو بس اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ یہود کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ جب قبلے کی تبدیلی ہوئی تو ایک اور نشانی پوری ہو گئی۔ ان کے علماء نے چپکے چپکے باتیں کی کہ اس کا مطلب کہ یہ وہی نبی ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں۔ اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ نوٹ کریں گے، جب نبی کو یہ بات کہی جا رہی ہے تو امت کو کیا کہی جا رہے گی؟ آج اگر ہم آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے لگیں گے تو ہمارا نام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کو بہت امید لگ گئی تھی کہ اب تو قبلے کی تبدیلی کی نشانی بھی یہود نے دیکھ لی، اب تو یہ ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا یا اس نبی کو یا اس قرآن کو یعنی اس دین کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے۔ عام یہود اور نصارہ کی بات ہم نہیں کرتے، وہ بھی آج ایسے ہی غافل ہیں جیسے آج کا عام مسلمان غافل ہے، لیکن علماء یہود اور علماء نصارہ کو یہ 100% یقین تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ آج والوں کو بھی یقین ہے، مانتے کیوں نہیں ہیں؟ مگر ان میں سے ایک گروہ کو جانتے بوجھتے چھپا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کو مان لیں گے تو ہماری لیڈرشپ ختم ہو جائے گی۔ یہ قطعی امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، بس تم ہرگز اس کے معاملے میں کسی شک میں نہ پڑو۔ اور بات یہ کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں کہیں بھی تم ہو گے اللہ تمہیں پا لے گا، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ یہی بات ہے آج میرے اور آپ کے لیے۔ آج بہت جھگڑے ہیں ہمارے، اللہ کہتا ہے جھگ نیکیوں کی طرف بھاگو گے اللہ تعالیٰ تم سے دوسرے کام خود بخود لے لے گا۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے عمل کیا ہے کہ فقہی بحثوں میں بڑھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات میں جانے کی بجائے नेकियों में दौड़ लगाओ। देखिए, आप में से मेरे में से किसको पता है कि हमारे पास कितना वक्त है, कितने लोग इस दुनिया से चले गए, हम भी उन्हीं में एक हो जाएंगे। आज इन चंद दिन की नेकियों को खैर से बना लीजिए। बस आप देखिए कि आपके पास नेकी का कोई मौका आता है, आप क्या सोचते हैं कि ये मेरी नेकी है, इसको जल्दी से पकड़कर अपने नेकियों के पलड़े में डाल दूं तो आप उसको फौरन कर लेंगे। और अगर आप उसकी दुनिया की इफ्स एंड बट्स में पड़ गए, होगा क्या, फायदा क्या होगा, ये कौन कह रहा है, ये किस गिरोह से ताल्लुक रखता है, ये किस जमात से है, इसके मोटिव्स क्या हैं, तो आप अपनी नेकी खो देंगे। आज उम्मते मुस्लिमा का ये अलमिया है, अपने नामों, गिरोहों और अपने मनसब और अपनी पोस्ट पे पहुंच कर वो फर्स्ट तबेकुल खैरात को भूल जाते हैं। कल क्यामत के दिन सिर्फ एक नेकी की कमी इंसान को जन्नत से निकाल कर जहन्नुम में भेज देगी। तो आज जो करना है वो कर लें, एक वक्त में एक नेकी तो बिल्कुल ना करें, कम से कम दो करें। और अल्लाह ने हमें जितनी सेंसेस दी है ना, आंखें, कान, हाथ, दिल, दिमाग, हर एक से एक वक्त में हम एक नेकी करें तो एक वक्त में हम पांच नेकियां कर सकते हैं, देखने की, सुनने की, बोलने की, लिखने की, अपनी स्पीड को तेज करने की। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें बेहतरीन तरीके से इन चीजों को पाने की तौफीक दे। जहां भी तुम होगे अल्लाह तुमको पा लेगा, इसकी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं। व मिन हैसु खरज तफवल्ली वज्हक, तुम्हारा गुजर जिस मुकाम से भी हो वहीं से अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ फेर दो, क्योंकि ये तुम्हारे रब का बिल्कुल बरहक फैसला है और अल्लाह तुम लोगों के अमल से बेखबर नहीं। और जहां से भी तुम्हारा गुजर हो अपना रुख मस्जिद हराम ही की तरफ किया करो, और जहां कहीं भी तुम हो इसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत ना मिले। आपको जाहिर लग रहा होगा कि तकरार है, रेपिटिशन है एक ही हुक्म की। वाह, क्योंकि पहली दफा कोई हुक्म बदला था, नस्ख का पहला मौका था। लोग एक चीज के यूज्ड हो चुके होते हैं। अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं, अकेले नमाज पढ़े तो भी किबले की तरफ पढ़ोगे, जमात से पढ़े तो भी किबले की तरफ मुंह करोगे, सफर में हो, हजर में हो, जिधर भी हो, अब तुम्हारा किबला बैतुल्ला होना चाहिए। आज अफसोस की बात है कि मुसलमान नमाज पढ़ते हुए तो इंचिस के साथ नाप कर किबला देखते हैं, कंपस के साथ किबला नापते हैं, और उनके ख्याल के मुताबिक अगर कोई 19-20 इधर से उधर कर दे तो कहते हैं नमाज दोहराओ। लेकिन हमारी जिंदगी गुजारने के किबले किधर है, शादियों के किबले क्या हैं, कमाइयों के किबले क्या हैं, हमारा लाइफ स्टाइल किधर है। ये तो नहीं हो सकता कि नमाज में किबला हमारा मस्जिद की तरफ और काबा की तरफ हो, और तिजारत में हमारा किबला दिल्ली की तरफ हो जाए, और शादी में हमारा किबला जो है वो समझ लीजिए कि यूके की तरफ हो जाए। ये तो एक रंग बिरंगा मुसलमान होगा। किबला एक जहत है कि उम्मत मुस्लिमा हर काम अल्लाह के हुक्म से करेगी, तो जिंदगी के किबलों को भी उसी तरह लेने की जरूरत है जैसे नमाज के किबलों को लेते हैं। फिर फरमाया, हाँ जो जालिम है इनकी जुबान किसी हाल में बंद ना होगी, तो तुम इनसे ना डरो बल्कि मुझसे डरो। इसको हाईलाइट कर ले। अभी मैंने जितने आखिरी जुमले बोले ना, हम में से अक्सर वो सिर्फ लोगों के डर से करते हैं। शादी सादगी से कर दी तो लोग क्या कहेंगे, बातें करेंगे, बेटी को जहेज ना दिया तो उसका ससुराल क्या कहेगा, और दिस एंड दैट। अल्लाह कहते लोगों से डरते हो, वो तुम्हें क्या देंगे, वो तो तुमसे सब कुछ लेकर भी तुमसे खुश नहीं होंगे, तो लिहाजा तुम मुझसे डरो। और इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत को पूरा करूं, और इस तवक्को पर कि मेरे इस हुक्म की पैरवी से तुम इस तरह से फलाह का रास्ता पाओगे जिस तरह तुम्हें इस चीज से फलाह नसीब हुई कि मैंने तुम्हारे दरमियान तुम्ही में से खुद एक रसूल भेजा जो तुम्हें मेरी आयात सुनाता है, तुम्हारी जिंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताबो हिकमत की तालीम देता है, और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम न जानते थे। बस तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और कुफराने नेमत अदा ना करो। आपको ये आयत पढ़ते हुए हजरत इब्राहिम की दुआ याद आई पिछले पारे में, बड़ी रब्बना वबअस फीहिम रसूलन, यहाँ अल्लाह कहते हैं वो दुआ कबूल हो गई। याद रखिए, आज की उम्मत मुस्लिमा की इसलाह का भी यही रास्ता है। मैं और आप कहाँ से शुरू करें, पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से ये टॉपिक चल रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर इसको मैंने मुख्तलिफ एंगल से देखा है। आज हम जो दुनिया के हालात और उम्मत मुस्लिमा के हालात देखते हैं उसको देखकर दर्द तो हर दिल में आता है ना। बेहिस और बेदर्द इंसान तो बहुत थोड़े होंगे। मुसलमान होने के नाते हम अपने दिल में तकलीफ महसूस करते हैं कि हम क्यों दबे हुए हैं, हम क्यों बुरे बनते हैं, हम क्यों न्यूट्रल, हम सुस्त क्यों हो गए, हम लेजी क्यों हो गए, लेकिन ये नहीं समझ आता चेंज कहाँ से लाए। आप किसी भी एक मुल्क को जहन में ला के देखिए, रिश्वत उधर आम, चोरियाँ उधर आम, धोखा उधर, गंदगी उधर, बुराइयाँ उधर। अब आप परेशान होते हैं हम क्या करें, कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें। एक एक फर्द के हाथ में ये किताब देने की जरूरत है। इस वक्त एक कंपेन चलनी चाहिए यूनिवर्सल लेवल की, कि जिसके अंदर उम्मत मुस्लिमा के एक एक फर्द को इन चार स्टेप से गुजर, यतलु अलैहिम आयाति, युजक्कीहिम, युअल्लिमुहुमुल किताब, कुरान को समझें, उसको पढ़ें, उसका में फहम हासिल करें, उस पर ज़िंदगी बसर करें। एवरी वन शुड हैव अ ब्रेक। मसलन बड़ी बातें कर सकते हैं हम, आगे पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ज़रिए से कोई बात कर दे। आप देखिए कि मिसाल है कि डॉक्टर्स हैं, जितने इस वक्त मुसलमान डॉक्टर्स हैं, ये हर मुसलमान हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि जाके उनको वॉच आउट करें। कितने कुरान पढ़े हुए हैं, सही पढ़ सकते हैं नहीं, कितने समझते हैं, कितनों का अमल है। अब उसमें लगता है कि 80% बेचारों को मौका ही नहीं मिला, क्या करे? कोई एक ऐसा इमरजेंसी कैंप शुरू करे कि उनको खुद जॉब्स दे, पैसे दे, और उनको कहें कि तुम जल्दी से कुछ 2-3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, जिस लेवल का कोई कर सकता है उतना जाकर कोर्स कर कराओ, हम तुम्हें घर बैठे पैसे देंगे, और तुम कुरान पढ़ोगे, तुम्हारी जगह काम कोई और करेगा। लेवल की बात करें, 20 डॉक्टर्स तैयार हो गए, उनको वापस भेजें जाके, जाओ अब तुम दूसरों की भी ड्यूटी करो, हम तुम्हें डबल पे देंगे, और वो बाकी 20 को लाकर भेजे, और उलमा बैठे हो और दिन रात एक कर कर हमारी उम्मत कुरान सीखे। यही इंजीनियर्स में होगा, यही टीचर्स में होगा। मैं कहती हूँ किसी टीचर, आज आप देखिए दो बड़े मल हैं, अभी तो बात शुरू हुई है, पूरे कुरान में आप पढ़ेंगे तो आपकी भी इंशाल्लाह सोच वाजी होगी। आज दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हर एक के जहनों पे हैं, बच्चों के, बड़ों के, एक मीडिया और एक टीचर्स। हर दौर के कुछ इन्फ्लुएंशियल या जिसको आप कहना चाहिए कि असर रखने वाले ग्रुप होते हैं, आज बच्चे स्कूलों में सीख के आते हैं और हम घर बैठ के मीडिया से सीखते हैं। अगर हमने इन दो फॉर्म्स को इस्लाम पे डाल दिया, इन दो का तज़किया हो गया, जो इन आयात में पूरी उम्मत समझ जाएगी। बहुत सारों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ चंद चोटी के बड़े बड़े लोग जिनको लोग फॉलो करते हैं, जो इन लीड्स हैं, उनको पकड़ के दीन सिखा दिया जाए, वो खुद ही दूसरों को सिखा लेंगे। लेकिन इसके लिए कोई साहिब दर्द खड़ा हो। अब आप कहेंगे अच्छा फिर हम क्या करें, मैं और आप अपना हिस्सा शुरू कर दें। आपके घर की मासियाँ, अब अमेरिका में रहते हुए तो मासियाँ कोई नहीं होती, चले कभी मेट्स आती होंगी हफ्ते में या महीने में एक बार, आपके पोस्टमैन, आपके कोई किसी भी खूबसूरत तरीके से अपने अंडर रहने वाले लोगों को इस्लाम की खूबसूरती दिखाइए, अपने घर में, अपने बच्चे। आप और मैं सिर्फ अपने घर की खबर आज जाके देख लेना कि दो बच्चे, मियाँ और सास हैं और नंद है, फुलाएं, किसको कुरान सही पढ़ना आता है, किसको तर्जमा समझ आता है, किसका तस्किया हुआ, किसका नहीं, तो बस उस पर काम शुरू करें। अगर हम सब खुद अपने अपने छोटे छोटे यूनिट्स में काम करेंगे, हुकूमत का काम कितना आसान होगा। हजरत उमर ने इतना खूबसूरत पैकेज बनाया था, इंशाल्लाह जिंदगी रही, आपको इसी में कुछ चीज़ें उनकी कोट करवाऊंगी। क्या तरीक़ाकार था उन्होंने, जितना कुरान फैलाया, आम किया, किसी का नहीं। आज एहसान है हजरत उमर का, ये जो मदरसा सिस्टम और एजुकेशनल लेवल है, हर 20 घरों में से एक घर को उन्होंने मदरसा बना दिया था। जिस्म में खून फैलता है ना तो जिस्म सेहत पाता है। जब तक मुस्लिम कम्युनिटी में इल्म देने वाले इदारे खून की नालियों की तरह नहीं बहेंगे, चेंज नहीं आएगी। ये तो बहुत रिसेंटली बात है, आज से चंद सौ साल पहले ये सिलसिला ड्रॉप हुआ। ये जो आज आप देखिए, उसका मदरसा, उसकी गली, उसकी मस्जिद, ये तो इस्लाम का मिजाज नहीं था। पीछे से एक सोर्स था और उसको फ्रेंचाइज करके दुनिया पूरी में फैला दो। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन हम तड़प तो सकते हैं, क्योंकि हम सब ने इस दुनिया में वो काम करना है जो अल्लाह के नबी छोड़ के गए। देखिए जिम्मेदारी का बोझ बहुत बड़ा होता है। क़यामत के दिन अल्लाह के नबी पूछेंगे, हम सूरह फुरकान पे पहुंचेंगे, आप खुद पढ़ लेंगे कि अल्लाह के नबी क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े हुए शिकवा कर रहे होंगे कि इन्ना कौमित तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा, अल्लाह मैं इनको काम दे के आया था कुरान का, इन्होंने तो उसको खुद ही छोड़ दिया। तो हमें कहाँ हक है खुश रहने का, हम कहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ज्यादा से ज्यादा जोश आता है फिर एक उमरा करके आ जाते हैं, और जज्बात है फिर 4 साल बाद एक हज करके आते हैं, और जज्बात है हम नफिल पढ़ते हैं, लेकिन इंसानियत तड़प रही है। वो दर्द नहीं आज उम्मत में, और इस दर्द के ना होने की सजा पूरी इंसानियत भुगत रही है। आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। और आप देखिए अल्लाह ने खुशखबरी कितनी दी कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। आज आप अल्लाह के रास्तों में लगें, अल्लाह आपके काम करने लग जाएगा, और अल्लाह का शुक्र करेंगे, ना शुक्रियों से बचेंगे। हमने जिक्र भी क्या बना लिया, तस्बीह पे 1,25,000 पढ़ना, 100 दफ़ा पढ़ना, 1,000 बार पढ़ना। हालांकि अल्लाह की याद तो बंदे को इस तरह से मसरूफ रखती है कि वही काम जो लोग तस्बीह के दानों से लेते हैं, वो बंदा मोमिन अपने दिल की धड़कनों से लेता है। उसके दिल की हर धड़कन के साथ लफ्ज अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह होता है। जब जिंदगी में अल्लाह की इतनी जरूरत है, तो फिर अल्लाह ताला का जिक्र और उसके साथ ताल्लुक भी इतना मजबूत होना चाहिए। ये कभी हो नहीं सकता कि एक ईमान वाला और जिंदगी के किसी लम्हे में अल्लाह को भूल जाए। नेकियां करना दूर की बात, गुनाह करते वक्त भी अल्लाह याद रहता है कि अल्लाह पकड़ेगा, अल्लाह मुझे खींच देगा। तो दुआ करते हैं कि हम अल्लाह ताला के बेहतरीन तौर पर जिक्र करने वाले बन जाएं। इसके बाद आप देखिए, जब इस रास्ते में आएंगे मुश्किलात तो आएंगी।